नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव, विरोध प्रदर्शन से पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और जद्दा में सऊदी स्मैश में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आज जोर शोर से प्रचार करेंगे। एक रिपोर्ट।
रायबरेली के चुनाव को लेकर अहम रणनीति तैयार करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम लखनऊ में रहेंगे। वे लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो चौथे चरण के मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक भी लेंगे। इन बैठकों से पहले वो फतेहपुर और चित्रकूट में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच, धौरहरा और लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा में कहा कि केवल एनडीए सरकार ही गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर कर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने काराकट संसदीय क्षेत्र में जनसभा की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 238 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस बीच राजधानी में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के उम्मीदवार समर्थकों के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पंजाब में आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से डॉ सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को मैदान में उतारा है, जबकि संगरूर संसदीय क्षेत्र से अरविंद खन्ना पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी।
इटावा लोकसभा क्षेत्र में 3 जनपदों इटावा, औरैया और कानपुर देहात का समन्वय है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं इटावा, औरैया, भरथना, दिबियापुर और सिकंदरा आती हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 18,27,781 मतदाता हैं। इनमें 9,83,960 पुरुष मतदाता और 8,43,780 महिला मतदाता शामिल हैं। इटावा को राजनीतिक पहचान और सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिली। सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार होने की वजह से समाजवादी पार्टी का दबदबा इटावा लोकसभा सीट पर रहा है। सपा इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने वाली इकलौती पार्टी है। भाजपा रामशंकर कठेरिया को एक बार फिर प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा ने अपनी सीट वापस हासिल करने के लिए जितेन दोरे को मैदान में उतारा है। उधर बसपा प्रत्याशी हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल मुकाबले को रोचक बना रही हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं स्पर्श सक्सेना।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान आज नई दिल्ली में आयोजित परिवर्तन चिंतन में भाग लेंगे। परिवर्तन चिंतन तीनों सेनाओं प्रमुखों के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इसका उद्देश्य नवीन सुधारात्मक विचारों और पहलों की शुरुआत करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ने की खबर है। पाकिस्तानी प्रशासन 11 मई को होने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहा है। हालांकि यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसी बल प्रयोग के खिलाफ प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। दोनों दलों ने कहा है कि यदि प्रशासन बल प्रयोग करता है तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन अन्यायपूर्ण कराधान, महंगाई और भारी बिजली बिलों के विरोध में है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय भूमि और जल संसाधनों पर स्वामित्व की भी मांग की जा रही है। इस बीच विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश का हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत का अभिन्न अंग पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को वापस मिलना चाहिए। नई दिल्ली के गांधी कॉलेज में छात्रों से बातचीत करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीओके का मुद्दा लोगों की प्राथमिकता में आ गया है।
Politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और श्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलेगी। मालदीव के विदेश मंत्री कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बांग्लादेश की यात्रा पर कल ढाका पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने श्री क्वात्रा की यात्रा के बारे में बताया कि आज प्रधानमंत्री शेख हसीना, विदेश मंत्री हसन महमूद और बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन के साथ भी बैठक करेंगे। हाल ही में फरवरी में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद के भारत आने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी चर्चा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच स्थायी मित्रता को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान तटीय गुजरात और कल तक केरल तथा माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनामणि ने बताया कि इस महीने की 11 तारीख तक उत्तर पूर्वी भारत में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
राजस्थान में हीट वेव जारी है। कुछ इलाका महाराष्ट्र का टेम्परेचर जो है 41 से 43 तक है। अहमदाबाद भी मध्य प्रदेश का जैसे नौगांव और भोपाल ग्वालियर ये 41-43 और जो पूर्व भारत और जैसे दक्षिण पूर्व भारत जैसे साउथ ईस्ट पेनिनसुला और ईस्ट इंडिया अभी बारिश जारी है वो इलाका में और ये रहेगा 2 से 3 दिन तक।
देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की आशंका नहीं है। इस बीच दिल्ली में आज दिन के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वनों की आग की स्थिति के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिले में पिरोल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले में पिरोल यानी चीड़ के पेड़ की पत्तियों की सफाई में भाग लिया और लोगों को जंगल की आग को रोकने के लिए इस अभियान में भाग लेने के निर्देश दिये। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले वृक्ष चीड़ की पत्तियों को ही पिरोल कहा जाता है। अगर इसकी पत्तियों को समय से इकट्ठा नहीं किया जाता तो ये जंगल में आग फैलाने का काम करती हैं। पंजाब में गेहूं की कटाई तेजी से चल रही है। विभिन्न जिलों में कटाई के बाद बचे गेहूं के अवशेष को जलाने की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण पर काफी असर पड़ा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने खानपान की वर्तमान और आधुनिक आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार आधुनिक आहार दिशा निर्देश में विशेष रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए परामर्श है। नियमित व्यायाम, नमक का सेवन सीमित करने, वसा, चीनी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का सेवन कम करने और अधिक वजन और मोटापा रोकने के उपायों पर भी इसमें जोर दिया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल।
भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने विश्व की 14वें नंबर पर काबिज जर्मनी की नीना मितलम को जद्दा में चल रहे सऊदी स्मैश के क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। बत्रा ने 22 मिनट तक चले खेल में मितलम को 11-6, 11-9 और 11-7 से मात दी। जर्मनी की खिलाड़ी के खिलाफ बत्रा की यह पहली जीत है, जबकि इन दोनों का 4 बार आमना सामना हुआ है। अब भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला अगले क्वार्टर फाइनल में 5वें नंबर पर मौजूद जापान की हिना हयाता से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 9 ओवर और 4 गेंदों में बिना कोई विकेट खोए 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद फरहत। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 200 से अधिक सदस्यों की छुट्टी पर जाने से उड़ानें रद्द होने की खबर कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 90 उड़ानें रद्द की। हिन्दुस्तान लिखता है, यात्री हवाई अड्डों पर फंसे केबिन क्रू की सामूहिक छुट्टी से 100 उड़ानें रद्द। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर लिखता है, सीबीआई ने आरएमएल में की कार्रवाई, मरीजों से रिश्वत के आरोप में 2 डॉक्टर समेत 9 अरेस्ट। दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी एस्ट्राजेनेका, विवाद के बीच कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। देशबंधु सहित कई अखबारों की सुर्खी है। मुझे कुछ कहना है, वैज्ञानिकों ने सीखी व्हेल की एबीसीडी। समुद्री जीव की भाषा समझने में जुटे शोधकर्ताओं को शुरुआती कामयाबी, राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है। दुनिया भर में अप्रैल का महीना अब तक का सबसे गर्म रहा, जनसत्ता की सुर्खी है। पत्र लिखता है, बारिश और बाढ़ से कई देशों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अमर उजाला के शब्द हैं, मई में अब तक बारिश नहीं, झुलसा रही गर्मी। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ के न आने से बढ़ रहा अधिकतम तापमान, लोग हो रहे परेशान। स्मोकिंग करते हैं तो होने वाली संतान को अस्थमा का खतरा ज्यादा, 3 से 5 साल की उम्र में दिखता है इसका पहला लक्षण, दैनिक भास्कर की खबर है। कल विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडिया गेट को लाल रंग से रोशन किया गया, राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। चलो अब शुरुआत करें बाल विवाह का नाश करें। बीकानेर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान में हिस्सा लेते हुए पारंपरिक पोशाक पहने बच्चों के चित्र जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं। 24 साल बाद अक्षय तृतीया पर नहीं है शादियों का मुहूर्त, नवभारत टाइम्स की खबर है। कल रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने की खबर कई अखबारों में है। बांग्लादेश में कल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिचर्चा और कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव विरोध प्रदर्शन से पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और जद्दा में सऊदी स्मैश में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।